हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ठाकुर फार्म हाउस। अरमान ने अनुराधा को ठाकुर फार्म हाउस में बंदी बना लिया था और राजवीर को बुला लिया था। अरमान राजवीर को फार्म हाउस में छोड़कर बाहर चला गया। राजवीर उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जिसमें अनुराधा थी। उस कमरे में जाकर उसने देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, क्योंकि अनुराधा उसी हालत में थी जिस हालत में उसने अरमान को उसे रखने को कहा था, बिना कपड़ों के और हाथ बंधे हुए। अनुराधा राजवीर को देखकर चिढ़कर रह गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर उसके बराबर में बैठ गया और उसके माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, मैं नहीं तो कौन? क्या मेरी जगह किसी और के साथ तुम सब कुछ करना चाहती थी? अनुराधा ने नफ़रत से अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। राजवीर को उसके इस व्यवहार पर गुस्सा आ गया। उसने अपनी उंगलियों से उसका मुंह कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, तूने जो हरकत की उसकी वजह से मुझे पूरे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, और तो और सालों से मेरी जो पहचान गुप्त रखी गई थी वो तूने एक दिन में रिवील कर दी। मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, सब कुछ एक झटके में तूने बर्बाद कर दिया। चलो, अब तूने जो किया सो किया, अब ज्यादा ना सही थोड़ी बहुत तो तुझे भरपाई करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर राजवीर ने उसके ऊपर पड़ी चादर को एक झटके से अलग कर दिया और उस पर पागल कुत्ते की तरह टूट पड़ा। जानवरों की तरह उसे नोचने लगा, खाने लगा। इतना ही नहीं, राजवीर ने अनुराधा के जिस्म पर वो तबाही मचाई जो बेहद दर्द भरी थी। अनुराधा की छाती को उसने दांतों से काट काट कर एकदम बदसूरत बना दिया, और वो इतने पर ही नहीं रुका। जितना उसे दर्द दे सकता था उसने दिया। पूरे 1 घंटे तक उसके जिस्म से जी भरकर खिलवाड़ करने के बाद वो उसके ऊपर से हटा। जब राजवीर का काम खूब अच्छे से हो गया तब वो अनुराधा के पास बैठ गया और उसने उसके दोनों हाथ खोल दिए। अब मिस अनुराधा सेठी, अब मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारा प्लान आखिर क्या है? तुझे पता है अगर तू मुझे अपने प्लान के बारे में बता देगी तो उसके थ्रू मैं अपनी सस्पेंशन रोक सकता हूँ और शायद प्रमोट भी हो जाऊँ। अनुराधा काफी देर से खामोश थी। ऐसा लग रहा था मानो राजवीर कोई पहला शख्स नहीं था जिसने उसे जख्म दिए थे। वो ऐसे कितने ही मर्दों के संपर्क में आ चुकी थी। उसने एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ राजवीर को देखा और बेड के नीचे पड़े हुए अपने कपड़े उठाकर पहनने लगी। राजवीर, यही नाम है ना तेरा? ये सब करने के बाद तुझे लगता होगा तू बहुत बड़ा मर्द है, पर एक बात बोलूं, तू किसी काम का नहीं है। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू मुझसे सच निकलवा लेगा? तो ये तेरी गलत फहमी है। और सुन रही बात मेरे प्लान को, तो आज मैं तुझे वादा करती हूँ, अपना प्लान शुरू करने से पहले मैं तुझे बताऊंगी जरूर। उसके बाद देखते हैं जो हम लोग करना चाहते हैं क्या तुम वो सब रोक पाओगे। राजवीर उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा झुझला उठा और उसने उठकर एक तमाचा उसके गाल पर चढ़ दिया। चांटा लगने के बाद भी अनुराधा मुस्कुराती रही। अब राजवीर चिढ़ गया था और झुझलाकर कमरे से बाहर निकल गया। अनुराधा मन ही मन सोच रही थी, तुझ जैसे बहुत मर्द देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, और तुझ जैसे मर्दों को कैसे ठीक करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अनुराधा मन ही मन कोई प्लान बनाती हुई नीचे सीढ़ियों की ओर चल दी। उसका पूरा जिस्म दर्द से कराह रहा था, लेकिन फिर भी वो मजबूती से बाहर की ओर चलती रही। जब तक तेजाजी उसके आदमियों को छोड़ चुका था, अनुराधा के आदमियों ने जल्दी से अपनी मैडम के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी में बैठते ही अनुराधा ने अपने आदमी को हॉस्पिटल चलने को कहा और गाड़ी चल पड़ी। तभी अनुराधा ने देखा राजवीर अरमान के साथ खड़ा था। अनुराधा की नज़र जैसे ही अरमान पर पड़ी उसने अपने आदमी से गाड़ी रुकवा ली और शीशा नीचे करके अरमान को देखने लगी। अनुराधा के दिल में अरमान के लिए चाहत पैदा हो चुकी थी और वो उसे पाने का इरादा मन ही मन बना चुकी थी। मॉल। रोहित ने जल्दी से अबीर की गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। अबीर जोया को लेकर गाड़ी में बैठ गया और उसने रोहित को रिया को दूसरी गाड़ी में लेकर आने का इशारा किया। रोहित ने रिया को दूसरी गाड़ी में बैठा दिया और अबीर के ऑर्डर पर जोया और रिया के ड्राइवर को उनका खरीदा गया सारा सामान देकर घर की ओर रवाना कर दिया गया। अबीर की गाड़ी में बैठते ही जोया बाहर निकलने की कोशिश करने लगी और बोली, मिस्टर राठौड़, गाड़ी रोकिए और हमें जाने दीजिए यहाँ से। ऐसा कहकर जोया गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी और वो कहने लगी, अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं कूद जाऊंगी इसमें से। अबीर को लगा कहीं ये सच में ही न कूद जाए, इसलिए अबीर ने एक बार फिर जोया का हाथ पकड़ लिया और बैठ गया। अब जोया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नाकाम रही। इन सब से जोया को काफ़ी थकान होने लगी, सो अब वो अपनी आँखें बंद करके गाड़ी की सीट से टेक लगाकर बैठ गई। अबीर उसे कितनी देर तक देखता रहा। अबीर राठौड़ की गाड़ी जल्दी ही शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के आगे रुकी। अबीर ने जोया को गाड़ी से उतारा और जोया ने गाड़ी से उतरते ही अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखा तो इतने बड़े हॉस्पिटल को देखकर वो चौंक गई और सवालिया नज़रों से अबीर को देखने लगी। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो, जोया ने कहा। अबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो जोया का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले गया। रोहित भी रिया को हॉस्पिटल में ले आया था और वो भी हैरानी से चारों ओर देख रही थी। उसे तो लगा था अबीर राठौड़ से बदतमीजी करने के जुर्म में वो उन्हें किडनैप करने वाला है, लेकिन हॉस्पिटल को देखकर उसके सारे अंदेशे खत्म हो चुके थे। वहीं जोया अब कुछ नहीं बोल रही थी। वो अबीर के साथ साथ ही चल रही थी और हैरानी से रास्ते में पड़ने वाले सभी लोगों को देख रही थी, क्योंकि अबीर राठौड़ जहाँ जहाँ से क्रॉस कर रहा था वहाँ वहाँ के लोग अपना सर झुकाकर रास्ते से हटकर साइड में खड़े हो रहे थे। जोया काफी शॉक्ड थी कि हॉस्पिटल में भी अबीर राठौड़ के रूल लागू थे। जल्दी ही अबीर जोया को हॉस्पिटल के बने एक शानदार रूम में ले गया। उस जगह केवल VIP लोगों का ही ट्रीटमेंट होता था। जल्दी ही एक 40-45 साल की लेडी डॉक्टर वहाँ आ गई। पहले तो उसने आते ही अबीर राठौड़ को सर झुकाकर हेलो किया और इससे पहले कि वो कुछ बोलती अबीर राठौड़ बोलने लगा, डॉक्टर ट्रीट हर राइट नाउ। ऐसा कहते ही अबीर जोया को उस कमरे में पड़े बेड पर लेटाकर वहाँ से चला गया। जोया हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। तभी उस डॉक्टर ने जोया को अच्छे से चेक किया। जोया ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें बता दिया था और जल्दी ही डॉक्टर ने जोया की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया। अब जोया काफी ठीक फील कर रही थी। काफी हद तक उसका दर्द खत्म हो चुका था। करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। जैसे ही जोया उस कमरे से बाहर आई उसने देखा कि रिया वहाँ खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जोया को देखते ही रिया जल्दी से उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वो अमीर राठौड़ उसे यहाँ जबरदस्ती ले आया था, जोया ने कहा। हाँ दी, मैं जानती हूँ, और वो यहाँ से चला गया है और हम लोगों के लिए एक ड्राइवर और गाड़ी छोड़कर गया है जो हमें घर छोड़ेंगे, रिया ने कहा। क्या बात है रिया दी, चलो दी हम चलते हैं, अकरम आ गए होंगे और हम लोगों के लिए परेशान होंगे, जोया ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों अबीर राठौड़ की गाड़ी की ओर बढ़ गईं।
अबीर राठौड़ की गाड़ी में बैठते ही जोया का फ़ोन बज उठा। उन दोनों के हाथ में कोई फ़ोन नहीं था क्योंकि अबीर राठौड़ के आदमियों ने उनके फ़ोन छीन लिए थे। जोया और रिया अपने आसपास देखने लगी कि फ़ोन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी जोया को सामने गाड़ी के बैक सीट की पॉकेट में रखे हुए दोनों फ़ोन मिल गए। जोया का फ़ोन लगातार बज रहा था। उसने जल्दी से उठा लिया। ये अक्रम का फ़ोन था जो अब 12वीं बार आया था। जोया ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया और हेलो बोलने लगी। तभी अक्रम की आवाज़ आई। आप दोनों हो कहाँ? मैंने कितने फ़ोन कर लिए, आप लोगों को फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है आप दोनों को मैं कितना परेशान हो गया था। और जोया दी, मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगी। अगर आप लोग लेट होने वाली थीं तो एटलीस्ट मुझे खबर तो कर देती, अक्रम बिना जोया और रिया की सुने बोले जा रहा था। तब रिया ने कहा, अक्रम हमारी बात तो सुनो, वो हम लहंगा ट्राई कर रहे थे और फ़ोन हमारे बैग्स में थे। अक्रम बीच में ही बात काटते हुए बोला, लेकिन आप लोगों का सामान तो ड्राइवर के साथ कब का आ गया है, और देखो आप लोगों का कहीं कुछ पता नहीं है। रिया आप फ़ोन रखो, हम घर आ रहे हैं, हम वहीं आकर बात करेंगे, बस समझे तुम। रिया को गुस्सा आ गया और उसने अक्रम का फ़ोन काट दिया। जोया, क्या ज़रूरत थी भाई से झगड़ा करने की, वो हमारी फ़िक्र कर रहे हैं, उन्हें चिंता हो रही होगी। रिया दी, आपने देखा ना, वो हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जोया सीट पर टेक लगाकर बैठ गई। तब रिया बोली, जोया दी आज तो उस अमीर राठौड़ का एक अलग ही रूप देखने को मिला है ना, मुझे तो लगा था उसे हमारी कोई बात बुरी लगी है और वो अब हमें किडनैप करके मार डालेगा और हमारी बॉडी को कुत्तों को खिला देगा, रिया ने बेचारा समूह बनाते हुए कहा। रिया की बात सुनकर जोया खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। जोया को हंसता देख रिया को भी सुकून सा आया और वो भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी। तभी रिया ने कहा, जोया दी मुझे तो लगता है हमने अमीर राठौड़ को गलत समझ लिया है, वो इतना भी बुरा नहीं है, वरना अगर वो चाहता तो आज हमें किडनैप करके मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि आपको हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले आया। जोया उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, फिर बोली, तुम कुछ भी कहो, मेरे लिए तो वो एक सिरफिरा ही रहेगा, जोया ने मुंह बनाते हुए कहा। जोया और रिया ऐसे ही बातें करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थीं, इस बात से बेखबर कि कोई था जिसकी पल पल उन दोनों पर नज़र थी। जोया और रिया की ठीक सीट के ऊपर एक हिडन कैमरा था जिसमें जोया का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और कैमरे थोड़ा ऊंचा होने की वजह से जोया की चेस्ट का ऊपरी भाग साफ दिखाई दे रहा था। जोया ने खुद को कवर करने की कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि उसे तो लगा था वहां रिया और उसके अलावा और कोई नहीं था।